We'll start off with English. So yesterday we covered first three verses of the Nectar of Instruction. The first verse, what did it indicate? The first verse indicated the qualification of a devotee. What are the qualifications of a devotee? When does one become qualified to preach Krishna consciousness all over the world? And what are the qualifications? How many of you have memorized the verse? Okay, very good, very good. Okay. Puneet, you... Okay, Parul, recite the verse. Okay, very good. And the translation? Give her the mic. I thought you were going to say it in English. Okay. Prishni, can you say it in English? Okay.
One who can control all the substances, this is the earth of earth to tree, earth of money, earth of anger, earth of
very good. Sarvam apiman prithiving shashishat. What is the meaning of he can initiate people all over the world? Who can? Only a devotee can preach all over the world. Because he knows Krishna and he can instruct everybody about Krishna. And these are the qualities that automatically develop when one becomes a devotee of Krishna. He learns, automatically he controls his urge to speak, the urge of the mind, the urge of anger, the urge of tongue, belly and genitals. These are the six vegam, the urge. One becomes forced to succumb to these urges. Everybody wants to speak. Everybody's mind wanders. Everybody feels anger when his desires are not fulfilled. Everybody wants to gratify his tongue. And as a result of that, he develops the urge of the belly and genitals. But when one becomes a devotee of Krishna, then these urges automatically become subdued. Why it happens? Why it becomes automatically subdued? These urges become automatically controlled. In order to understand that, let us consider Krishna's instruction in Bhagavad Gita about our involvement in the material nature. What is Krishna saying in Bhagavad Gita? dhayate vishayan pumsha sangasteshu pajayate sangat sangjayate kama kamat krodho bhijayate krodhat bhavati sanmoha sanmohat smriti vibhrama smriti bhrangshat buddhinasho buddhinashat pranashyate. So Krishna very systematically is explaining how we become entangled in the material nature, and as a result of our entanglement in the material nature, we become lost. How it happens? Dhayate vishayan pumsha. Our consciousness goes out towards the objects of the senses. Eyes see. Now how many senses we have? We have 5 knowledge acquiring senses and 5 working senses and 1 internal sense. So this way we have 11 senses. The 5 knowledge acquiring senses or Gyanendriyas are eyes, ears, nose, skin and tongue. And the 5 working senses are bark, the tongue, or the speech, pani, hands, payu, anus, udar, belly, and genitals, upastha. So these are 5 working senses. We work through these 5 senses. Now, in Upadeshamrita also the same point has been mentioned, that they become controlled. To make advancement in spiritual life, it is very important that we learn to control our senses. Eyes, ears, nose, tongue and touch, speech, hands, legs, anus, belly and genitals, and mind. The internal sense. Internal sense means mind is the center of all the senses. These senses are acting externally, but internally the seat is the mind. All the senses are culminating into mind. When you look at the nervous system, what is the nervous? How many of you have done biology here? What is the nervous system like? Nervous system, nerves are going into the spinal column. The nerves are going into the spinal cord, right? And then the spinal cord is going into the end of the spinal cord is the brain center. Right? So all the senses, the sensory perceptions are carried through the nerves. All the nerves are ending in the sense organs. Some nerves are ending in the eyes, some nerves are ending in the ears, some nerves are ending in the nose, some nerves are ending in the tongue, and some nerves are ending in the skin. So this is how, where all the nerves are ending. Am I correct? And what are the nerves is doing? Nerves are actually carrying the impression of the senses. Where? To the brain center. And the brain center is the seat of the mind. So therefore mind is the internal sense. Now Krishna is saying that all the senses are dragging the consciousness dhyate vishayan pumsha, to the objects of the senses. What are the objects of the senses? What is the object of the eyes? Form. What are the object of ears? Sound. What are the objects of nose? Smell. What are the objects of skin? Touch. What are the objects of tongue? Taste. So we are always, senses are always running towards the objects of the senses. Eyes see something beautiful and immediately eyes carries the message to the mind. Oh, there is a beautiful object. And what does the mind say? Let me get it. Let me get it. Let me enjoy it. Isn't it? And then the working senses become active. The knowledge acquiring senses, some senses are acquiring the knowledge, and the working senses are there to enjoy them. And what are the working senses? Bak, Pani, Payu, Udar and Upastha. So speech, hands, legs, anus, belly and genitals. So Krishna is saying that the objects, the senses are running towards the objects of the senses. Dhyate vishayan pumsha. Consciousness through the senses is running out to the objects of the senses. And as a result of that, what is happening? Dhyate vishayan pumsha sangasteshu pajayate. The association takes place. And sangat sanjayate kama. Due to association, lust develops. Desire to enjoy. First at seeing or perceiving with the senses, then associating, then desire to enjoy, lust, kama. Now desire to enjoy, lust never satisfied, our desires never get satisfied, and as a result of that we become angry. Kamat krodho bhi jayate. From kam, from lust, anger develops. Krodho bhi jayate. And krodhat bhavati sanmoha. Due to anger, we become bewildered. Sanmohat smriti bibhrama. As a result of bewilderment, our memories are lost. Smriti bibhrama. Smriti bhrangshat buddhi nasha. When the memory is lost, then our intelligence is destroyed. Buddhi nasha. And buddhi nashat pranashyati. As a result of losing his intelligence, one becomes lost. So this is what is happening to everyone in the material nature. Now, do we want that? No. Will an intelligent man wants to be lost, want to lose his intelligence and get completely destroyed? No. What should an intelligent man try to do? That is what is being instructed in the Upadeshamrita. Why we decided to study Upadeshamrita, have a seminar on Upadeshamrita? So that we can very systematically and scientifically understand what is the mission, what should be our mission, why we are here, why we have joined ISKCON, why we joined ISKCON. We joined ISKCON with a purpose to gain ourselves, not to lose ourselves. In the material nature, everyone is lost. But ISKCON is here to show everybody how to gain himself. And in order to do that, what we have to do? Upadeshamrita is saying, we must learn to control our speech, the urge to speak. Not urge to speak, it's actually the urge to speak nonsense. That's what we should stop. One may say, Maharaj, you are speaking about controlling the urge to speak, but you are speaking for 2 hours. Isn't it? But yes, we are speaking. But what we are speaking? We are speaking sense, not nonsense. Nonsense should be stopped. But sense, yes, we must speak about. We must speak about Krishna. And by doing that, this urge to speak is controlled, conquered. First, therefore, controlling the urge to speak, then urge of the mind. And how the mind is controlled? The mind is controlled by thinking about Krishna. Mind will think. Mind's business is to think. It is not that the mind's activities will stop. Then what's the use? What's the use of having a mind? What's the use of, say, what's the use of having legs, if we don't want to walk? The purpose of legs is, what is the purpose of legs? To walk. Now if we don't walk, then what's the use of legs? Of course, nowadays people don't walk, they drive. They don't walk, they drive cars. And as a result of that, what is happening? The legs are becoming paralyzed. So similarly, the mind is there with a purpose. And what is the purpose of the mind? To think. So why should we stop thinking? The point is, we should stop thinking about nonsense. Nonsense thoughts should be stopped. But appropriate thoughts must be there in the mind. That is the purpose of mind. And what should mind think about? Mind should think about Krishna. So that is how the mind is controlled. Then anger. First of all, when one is internally satisfied, he doesn't have anger. Now by becoming a devotee of Krishna, when our heart becomes satisfied, then there is no anger. But still anger is there. Now if it is necessary, then we should use anger. How? By reacting against those who are offensive towards Krishna and Krishna's devotees. Like I gave the example of Hanuman yesterday. Hanuman was very angry with Ravan. Bhima used to get very angry with Duryodhana. Because it is natural for a devotee to become angry when he sees that someone is offensive to Krishna and Krishna's devotees. So this is how the krodha vegam is controlled. Then jivha vegam, the urge to eat. The urge to eat and relish nice foodstuff. So how do we control that? The urge to eat, by eating the right stuff. Eat Krishna prasad. Krishna varadayamoy koribare jivha joy saprasad anna dilo bhai. Krishna is very merciful. Therefore, in order to conquer our tongue, Krishna gave Krishna prasad. His own prasad, his own remnants. Saprasad anna dilo. And Shei Annam Ritopaho, eat that Krishna Prasad. And Radha Krishna Gunagao, sing the glory of Radha Krishna. So this is how the tongue will be controlled. Tongue has two purposes, two functions. One is to vibrate and other is to eat. So when we eat the right food and when we vibrate the tongue for the right purpose, then the tongue becomes controlled. And when the tongue is controlled, then all the senses will become controlled. Therefore, controlling the tongue is very important. But when the tongue is not controlled, then all the senses will become perturbed. All the senses will become disturbed. Tongue has a direct connection to belly. And the belly has a direct connection to genitals. A person who cannot control his tongue cannot control his sex desire. So in order to control one's sex desire, one must first learn to control his tongue. And how do we control our tongue? By taking Krishna Prasad. Therefore, we should be very careful not to eat something that is not offered to Krishna. But if we eat foodstuff that is offered to Krishna, then all our senses will become purified. So, vacha vego, manasa vego, krodha vego, jivha vegam, udara vegam, upastha vegan, and etan vegan, javishaheta dhiraha, sarvam apiman prithivim shashishyat. He can accept disciples all over the world. What does it mean? Accepting disciple means able to preach, able to teach all over the world. Accepting disciple is not just a matter of getting a position, but it is a function, it is a responsibility, it is a duty. So the point is, Krishna's devotee can teach, can lead the entire world in the most appropriate way. Krishna's devotees alone can teach and show the path to the rest of the world. So in order to control our senses and control the urges, these six urges, what should we do? What is the bottom line? How many of you understood? Please raise your hand. Yeah, very good. What should we do? Snigdha, what should we do? In order to control, how do we control the urges of the six urges? By becoming a devotee of Krishna. Very good. So the answer is very simple. By just becoming a devotee of Krishna, we can control. But those who are ignorant what they do, sometimes people, in order to control the tongue, what they do, they pierce the tongue with a rod, steel rod. And stick the tongue out of the mouth. That's not the way. These are all artificial means. They don't serve the purpose. In order to control the urge of to eat, they stop eating. But then what happens? For a few days they don't eat. But then they eat so much that they end up with a dysentery. So that's not the way. The real way is the positive way. And the simplest and the positive way is very simple. Just become a devotee of Krishna. Now the next point is, how does one become a devotee of Krishna? in order to become a devotee of Krishna, we should not do certain things. What are those things that one should not do? Anyone else? What are the things that one should not do? Yes, Radha Charan Prabhu. Very good. And Jana Sangarsya, Lolancha, Sadhir Bhakti, Vinashati. Atyahara. Atyahara means eating too much or making an unnecessary endeavor to accumulate material possessions. Prayashyashya, making unnecessary endeavors. And prajalpa, talking about mundane things. Niyamagraha, too much indulgence in following the rules and regulations of the scripture, or neglecting the rules and regulations of the scriptures. And jana sangasya, associating with mundane people, materialistic people, their association, and lolancha, greed, to become avaricious, to become greedy. So these are the six things. What do they do? They sadbhir bhakti vinashati. They destroy devotion. So if we want to become a devotee, did we conclude that we want to become devotees? In the first verse, we want to become devotees. So in order to become devotees, what do we have to do? We must avoid these six things. And there are six other activities that we must accept. What are those six activities? Yes? Very good. Very good. So can you say the translation? The meaning? Give him the mic. So you recite the verse and then translate. It's utsahat, nishchayat, then dhaijyat. Dhaija means patience. Then tat tat karma pravartana. Sato vritte means, sato means previous acharyas, the sadhus, and vritte means their footsteps, to follow their footsteps. So these are the six activities that one must perform, execute, or follow in order to make advancement in spiritual life. Very good, thank you. So this is what we discussed yesterday. अच्छा अब तो मैं अंग्रेजी में बोला तो आप सब समझ गए ना क्या हिंदी में बोलना होगा हिंदी में बोलने की जरूरत है है कौन अच्छा ठीक है हम संक्षेप में हिंदी में उसका विश्लेषण करने का कोशिश करूंगा पहला श्लोक उपदेशामृत का पहला श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी ने विश्लेषण कर रहे हैं कि ये जो छह प्रकार का वेग है वेग का मतलब जिसको रोकना कठिन होता है, जैसे नदी में पानी बह रही है, वो पानी का वेग उसको रोकना कठिन होता है। तो ऐसे ही जो ये जो वेग है, हमारे छह प्रकार का वेग होता है। एक वेग है वाणी का वेग, बातें करने का वेग, और दूसरा है मन का वेग। मन का वेग क्या? मन ये भौतिक जगत को, विषय को भोग करने को इच्छा करता है। मन क्या करता है? हमारे जो इंद्रिया हैं, इंद्रिया के जो अनुभूति हो रहा है, इंद्रिया के द्वारा जो उपलब्धि हो रहा है, ये सारे उपलब्धि को मन में पेश करता है, और उसके अनुसार मन विचार करता है, ये चीज हमको चाहिए और ये चीज हमको नहीं चाहिए। ये मन का कार्य क्या है? संकल्प और विकल्प। ये हमको चाहिए, ये हमको नहीं चाहिए। हमको दौलत चाहिए, हमको कठिनाई नहीं चाहिए, है ना? हर व्यक्ति ऐसा सोचता है। हमको सुख चाहिए, हमको मुसीबत नहीं चाहिए। तो ये मन जो हमारे इंद्रिया के लिए जो अनुभूति, इंद्रिया का जो उपभोग के जो वस्तु है उसको चाहता है, और इंद्रिया के लिए जो कष्टदायक है उसको नहीं चाहते। जैसे गर्मी के समय हम ठंडा पानी चाहते हैं, गर्मी के समय हम ठंडा पानी से नहाना चाहते हैं, और ठंडे के समय हम गर्म पानी से नहाना चाहते हैं, है ना? ये अगर ठंडा के समय ठंडा पानी दिया गया तो क्या होता है? ठंडा लगता है। किसको ठंडा लगता है? कैसे ठंडा लगता है? इंद्रिया के लगता है। इंद्रिया का जो अनुभूति है, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतस्न सुख दुखदा, ये जो सुख और दुख का जो अनुभूति है, ये तो मात्रा और स्पर्श का अनुभूति है। और भगवान भगवद गीता में इस विषय में बोले हैं कि ये जो हमारा मन, हमारा चेतना को इंद्रिय के द्वारा इंद्रिय के विषय के ओर ले जा रहा है ना? हमारा चेतना अब कहां जा रहा है? बाहर निकल रहा है। कैसे निकल रहा है बाहर? हमारे इंद्रिय के माध्यम जा रहा है। आंखें कुछ देखता है और साथ साथ ही मन वहां चला जाता है। जैसा आंखें देखता है एक पोस्टर, बिलबोर्ड, बहुत सारे अच्छा, बहुत सुंदर एक गाड़ी, और मन बोलता है चलो भाई ये गाड़ी तो हमको चाहिए, है ना? तो ऐसे इंद्रिय के द्वारा जो उपलब्धि होता है उसके अनुसार मन उसको चाहता है। तो ये जो चाहना है, ये चाहना से काम का उदय होता है। चाहना मतलब हम इसको भोग करना चाहते हैं। धायते विषयान पुंश संगस्तेषु पजायते, संग होता है। कोई एक पिक्चर देखता है, कोई किसी चीज का या कोई व्यक्ति का, और उसके कारण उसका साथ संग होता है, उसका चिंतन हो रहा है उसका, और उसके कारण उसको भोग करने का इच्छा होता है। ये जो भोग करने का जो इच्छा है इसको काम कहा जाता है। धायते विषयान पुंश संगस्तेषु पजायते, संग होता है, संगात संजायते काम। कामात क्रोधो भी जायते, काम से क्रोध का उत्पत्ति होता है। जब काम जब सफल नहीं होता है, जो हम भोग करना चाहते हैं पर भोग करने के पश्चात या जब हम भोग करने नहीं मिलता है तो हमको क्रोध होता है, और क्रोध से क्रोधात भवति सन्मोह, क्रोध के कारण सन्मोह होता है, और सन्मोहा स्मृति विभ्रम, सन्मोह के कारण, मोह के कारण हमारा स्मृति भ्रमित हो जाता है, स्मृति विभ्रम, और स्मृति भ्रंशात, स्मृति भ्रमित हो जाने से बुद्धि नाश हो जाता है, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश, और जब बुद्धि नाश नष्ट हो जाता है तब प्रनश्यति, ओ नष्ट हो जाता है, विनष्ट हो जाता है। तो हमको, हम क्या विनाश प्राप्ति के लिए, हम क्या चाहते हैं कि हम सब खो जाए, नष्ट हो जाए, तो हम क्या चाहते हैं, हम अपना स्वरूप को समझ पाए, हम अपने आप को पहचान ले, और हमारा असल स्थिति में हम अपने आप को स्थापन करें। तो वो जो अपना असल स्थिति जो है, सही स्थिति जो है, वो है भक्ति। भक्ति का मतलब भगवान के साथ संपर्क जोड़ना। तो भगवान के साथ जब हम संपर्क जोड़ लेते हैं तब ये बहुत आसानी से ये छह वेग दमन हो जाता है, वश में आ जाता है। कैसे? जब हम भगवान का भक्त बनते हैं तो बाच वेग, वाणी का जो वेग है वो क्या होता है तब, वो वाणी का वेग हम कैसे उसको उपयोग करते हैं, भगवान को नाम या भगवान के बारे में बोलने। इस सिलसिले में बोला था कि आप बोल सकते हैं कि वाणी को दमन करना चाहिए, मतलब बाच वेग, वाणी का जो वेग है उसको दमन करना चाहिए, मतलब बातें नहीं करना चाहिए। तो महाराज आप क्यों बातें कर रहे हैं, एक दो बातें नहीं, दो घंटा भर ऐसे ही लगातार बोलते रहे हैं। तो असल में जो बातें हमें, जो यूजलेस है, व्यर्थ हैं, जो कोई काम के नहीं है, वो बातें नहीं करना चाहिए। जो वाणी हमको, जो बातें करने से हम गिर जाते हैं, वैसे बातें नहीं करना चाहिए। परंतु जैसे जो जिस बात हमको हमको ऊपर ले जाते हैं उसको करना चाहिए, है ना। तो वाणी का जो वेग है उसको क्या करना चाहिए, भगवान के नाम कीर्तन या भगवान को महिमा का प्रचार करके उस उपयोग करना चाहिए। और मन का जो वेग है, मन का वेग क्या है, चिंतन। ऐसा नहीं कि चिंतन करना बंद कर देना, ऐसे कोई कोई किसी, बहुत सारे व्यक्ति सोचते हैं कि मन को, मन में जो चिंता है उसको दूर करना चाहिए। वो सोचते हैं योग का मतलब होता है कि मन का चिंतन बंद कर देना। तो अगर मन चिंता नहीं करेगा तो मन का जरूरत क्या था, क्यों क्या था। जैसे अगर हम, जैसे पैर का जरूरत क्यों है, चलने के लिए, तो मतलब पैर जब है तो चलना चाहिए। मुंह का जरूरत क्यों है, खाने के लिए। पेट का जरूरत क्यों है, खाना हजम करने के लिए। तो ये जो हमें, जो ये सारे मिला है, इसको जरूर, बहुत जरूरी इसका आवश्यकता है, नहीं तो वे मिला क्यों, इसका उपयोग क्यों था। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि जो मन है, मन का कार्य है चिंतन। तो मन जब है तो मन का चिंतन होगा, परंतु किसका, कौन सी विषय का चिंतन होना चाहिए, ये हमको विचार करना पड़ेगा। हम चिंतन किसके बारे में करेंगे, भगवान के बारे में। और वो वैसे भगवान का चिंतन जब होता है तब मन सार्थक हो जाता है। तो मन का वेग दमन कर कैसे हम कर सकते हैं, भगवान के बारे में चिंता करने से। उसके पश्चात है क्रोध, क्रोध का वेग का दमन कैसे हो सकता है। मन जब संतुष्ट हो जाता है तब क्रोध नहीं होता है। जो संतुष्ट है वो क्रोधित नहीं होता है, असंतोष के कारण ही केवल क्रोध होता है ना। कोई व्यक्ति है जिसका वो बहुत मुसीबत में होने से भी उसका क्रोध नहीं होता है, क्यों? क्योंकि उनका मन में जो प्रशांति है उस प्रशांति के कारण उनका क्रोध नहीं होता है। और क्रोध अगर होता भी तो क्यों होता है, भगवान के बारे में जब विद्वेष पोषण करता है और या भक्तों के विद्वेष जब होता है तब वो क्रोधित हो जाता है। तो वैसे क्रोध का वेग का भी दमन कैसे हो सकता है, भक्ति के द्वारा। भगवान के जब भगवान भगवत भक्ति जब होता है तब क्रोध वेग का भी दमन हो जाता है। और उसके बाद जीवा का वेग, जीवा का वेग, जीवा का क्या काम है, खाना। तो हम जब सही खाना खाते हैं तो सही खाना क्या होता है, मनुष्य के लिए कौन सी खाना होना चाहिए, पहले तो ये है मनुष्य के लिए खाना शाकाहारी होना चाहिए। मांस मछली जो है ये जानवर का खाना है, जानवर का भी नहीं, जानवर में भी कोई जानवर है जो मांस मछली नहीं खाते हैं, है ना। जैसे गाय, घोड़ा, हाथी, ये सब शाकाहारी है। और कोई जानवर है जो ये मांस खाते हैं, जैसे शेर या कुत्ता, ये सारे। तो अब हम देखते हैं जो शाकाहारी जो पशु हैं और मांसाहारी जो पशु हैं वो दो पशु में कुछ अंतर है। जो शाकाहारी पशु जो है उसका आचरण कैसा होता है, शांत होता है, और जो मांसाहारी और हिंस्र होता है। तो अब बताइए ये हम जो खाते हैं खाना का प्रभाव हमारा मन में आता है, खाना का प्रभाव होता है ना, जैसा हम खाना खाते हैं वैसे प्रभाव होगा। जो लोग मांस खाते हैं उसका मनभाव बहुत चंचल या हिंस्र होता है, और जो शाकाहारी है उसका मनभाव बहुत शांत और सरल होता है। पर असल मनुष्यों के लिए केवल शाकाहारी ही नहीं, मनुष्य का काम है भगवान को भक्त बनना। और वैसे जब भगवान का भक्त बनते हैं तो वो केवल भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करते हैं, और भगवान का प्रसाद है भगवान का कृपा, और भगवान का कृपा प्राप्त होने से हमारा हृदय निर्मल हो जाता है, हमारा पेट शांत हो जाता है, और उपस्थ वेग का प्रभाव तब नहीं रहता। तो आप बताइए ये छह वेग को दमन करना कैसे संभव होता है। कोई कोई व्यक्ति सोचता है कि वाच वेग, वाणी का जो वेग है, कहने का जो वेग है, उसका दमन करना वो उसको फाड़ता है, जीभा को फाड़ के उसमें एक ये डालता है आयरन पिन, वो लोहा का ये डालता है ये फाड़ के, वो जीभा निकल जाता है। और वैसे का उसका वाणी बंद हो जाता है, कहने का और संभावना नहीं रहता है। पर ये ऐसे करने से क्या वाणी का वाष्पिक दमन होगा? नहीं, ये कृत्रिम उपाय से कभी नहीं संभव होगा। और कोई सोचता है कि मैं मेडिटेशन करके मन का जो वेग उसको दमन करूंगा, तो मन का वेग दमन होता है? ऐसे बैठा है ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट बैठता है, हम मैं ध्यान कर रहा हूं, बैठे हैं एक जगह पर, मन वो 10 मिनट वो 10,000 मील चक्कर लगा के, केवल 10 मिनट में 10,000 मील नहीं, एक सेकंड में 10,000 मील चक्कर लगाता है, तो उससे फायदा क्या होगा? इस विषय में, इस सिलसिले में भगवान भगवत गीता में क्या बोले हैं? सर्वेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ आत्मा मिथ्याचार से उच्यते। अर्थात सर्वेन्द्रियाणि संयम्य, सारे इंद्रियां को संयम करके, संयत करके, या आस्ते मनसा स्मरण, ऐसे इंद्रिया का संयम हो गया, आंखें बंद हो गए हैं, कान से भी सुनना नहीं रहा है। कल जैसे मैं विश्वामित्र के बारे में बोल रहा था, 64,000 साल तक वैसे तपस्या किया, सारे आंखें बंद हो गया, बाहर कुछ नहीं, इंद्रिया का अनुभूति नहीं हो रहा है, पर जा आस्ते मनसा स्मरण, मन में भोग विषय का चिंतन हो रहा है। इंद्रियार्थान विमूढ आत्मा, वो जो मूढ़ है व्यक्ति है, वो इंद्रिया अनुभूति के लिए ये चिंतन कर रहा है, इंद्रिय उपलब्धि इंद्रिय भोग के लिए चिंतन कर रहा है, वो मिथ्याचार से उच्यते, उसका सारे काम जो है झूठ है, गलत है, सही नहीं है। और ये वाणी किसका है? भगवान कह रहे हैं। तो ये आलतू फालतू जो योग जो है उसको नहीं करना चाहिए। सरल उपाय क्या है? भगवान को शरण लेना, भक्ति। उसमें क्या कुछ हमको टांग फाड़ना पड़े होता है? हाँ, लोहा का ये लगाना पड़ता है ना, क्या एक जगह में बैठ के कुछ कृत्रिम प्रक्रिया का अनुशीलन करना होता है? नहीं, हम के मन वाणी का वेग को सदउपयोग करके, बंद नहीं करके, रोक नहीं करके, वेग का रोक रुकावट नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? वेग का सदउपयोग हो रहा है। इसका एक दृष्टांत ऐसे दिया जा सकता है, जैसे हम जब नदी में तैरते हैं, यहाँ जो जिस नदी में स्रोत बहुत ज्यादा है उसमें अगर आप तोड़ने को जाते हैं और जो स्रोत के विरुद्ध आप अगर जाना चाहते हैं तो क्या होगा? आ जा सकेंगे? नहीं। पर जो स्रोत के अनुकूल अगर आप चलते हैं तो बहुत आसानी से आप बहुत जल्दी जल्दी बहुत दूर तक चले जा सकते हैं। हम लोग करता था मायापुर में गंगा है, मायापुर में, और गंगा का तेज, लहर का तेज बहुत तेज है, तो हम लोग पैदल चला जाता था आधा मील ऐसा, और जाके वो पानी में आता था, और जो लहर के साथ हम भासते हुए आ जाता था, कुछ मुसीबत नहीं, कुछ तकलीफ नहीं होता, तैरना भी नहीं पड़ता था। हाँ, हम ऐसे तो हम स्रोत के साथ अगर चलते हैं तो बहुत आसानी से हम चल सकते हैं, स्रोत के विरोध हम चलते हैं तो मुश्किल होता है। तो ये वेग जो है इसको दमन नहीं करना पड़ता है, इसको सदउपयोग करना पड़ता है। बातें करने का प्रवृत्ति है तो हम क्या बात नहीं करेंगे? नहीं, भगवान के बारे में बात करना, भगवान को नाम का कीर्तन करना। तो ये जो प्रवृत्ति जो है, ये प्रवृत्ति को शामिल करते हुए हम भक्ति को संपादन कर सकते हैं। मन का ये है प्रवृत्ति है चिंतन, भगवान का चिंतन करो। खाने का जीवा का प्रवृत्ति है खाना, अच्छा अच्छा खाना, ठीक है, भगवान को प्रसाद ग्रहण करो। और तब बाकी तीन जो है ना, जैसा क्रोध का वेग, उदर का वेग और उपस्थ का वेग, वो ऐसे ही बश में आ जाएगा। तो आप बताइए हमको क्या करना चाहिए। भगवान को भक्त बनना चाहिए। भगवान को भक्ति करने से सब बहुत ही सरल रूप से, आसानी से संभव होगा इसको दमन करना। तो अब हमको भक्त बनना चाहिए। तो भक्त बनने के लिए क्या करना चाहिए? कुछ काम नहीं करना चाहिए और कुछ काम करना चाहिए। जो काम से भक्ति विनष्ट होता है वो काम नहीं करना चाहिए। वो कौन सी काम है जिससे भक्ति विनष्ट होता है? कौन सा काम? अत्याहार, बहुत ज्यादा खाना, अत्याहार। और प्रयासश्च, प्रचेष्टा, प्रजल्प, भौतिक विषय में के बारे में, भौतिक विषय का चर्चा करना, नियमाग्रह, शास्त्र में जो निर्देश दिया है उसको न पालन करना। और केवल पालन करने के लिए पालन करना, उसका असल उद्देश्य समझ न पाना। और जनसंगश्च, जो भौतिक विषय में जो फंसा हुआ है, मेटीरियलिस्टिक व्यक्ति, उनके साथ संग नहीं करना। और लोलंच, लोलम का मतलब है लोभ, भौतिक वस्तु को संग्रह करने का लोभ नहीं करना। ये छह भक्ति को विनष्ट नष्ट कर देता है। और छह काम से भक्ति बहुत बढ़ता है, भक्ति का वृद्धि होता है, समृद्धि होता है। वो छह कार्य क्या है? ये भक्ति कार्य करने के लिए बहुत उत्साहित रहना, उत्साहत निश्चयात। भक्ति करने से भगवान का कृपा मिलेगा और इस भौतिक जगत का जितने सारे उलझन है, सारे उलझन से हम मुक्त हो सकेंगे। ये निश्चित रूप से इसको मान लेना। और भक्ति करते हुए भी अगर ऐसा मालूम होता है कुछ नहीं हो रहा है, हमारा एडवांसमेंट नहीं हो रहा है, तो कोई फिक्र करने का कोई बात नहीं है। ये हमको ये इसके लिए हमारा धैर्य, धैर्य का सरल हिंदी क्या होता है? सहन, धीरज। हाँ, धीरज, धीरज रखना। आज नहीं हो रहा है, होगा जरूर कभी ना कभी। अगर इस जिंदगी में भी नहीं हुआ तो अगला जिंदगी में होगा। मैं कितना जन्म जन्मांतर इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं और कितने सारे बैड हैबिट्स हम डेवलप किए हैं, वो सब क्या एक दिन में चला जाएगा? नहीं, समय लगेगा। कोई बात नहीं, समय तो है, कभी ना कभी जरूर होगा। ऐसे धीरज रखना। dhairjat tat tat karma pravartanat. Bhakti ke anukul jo karya hai usko karte rehna aur sanga tyagat, jis sang se hani hota hai bhakti ka, jo bhautikvadi vyakti jo hai unko sang se dur rehna, tyag dena wo sang, aur satovritte sadhuo ka sang karna, sadhuo ko nirdesh ke anusar acharan karna. To ye chhe kaam karne se kya hoga, bhakti प्रसिद्ध होगा, भक्ति का सिद्धि लाभ होगा, भक्ति में हम आगे बढ़ते रहेंगे. तो ये तीन श्लोक हम कल विचार किया था और ये विचार करते हुए आज 8:45 बज गए, एक घंटा यहाँ ही चला गया. ठीक है, मैं जो कल बोल रहा था, देखिए ये सारे उपदेशामृत जब ये केवल 11 श्लोक है इसमें, पर ये सारे 11 श्लोक शायद हम पूरा नहीं कर पाएंगे उसको चर्चा, उसका विचार. पर हमारा उद्देश्य है ये आपको मार्गदर्शन करवाना, इस ग्रंथ में क्या किसका चर्चा हुआ है उसको समझाना, ताकि आप घर में बैठकर ये ग्रंथ पढ़कर आप इसको लाभ उठा सकते हैं, है ना. पूरा सब्जेक्ट अगर हम कवर नहीं भी कर पाया उससे भी कोई हर्जा नहीं है, कुछ लाभ तो हो रहा है ना, ये सुनने से कुछ फायदा हो रहा है तो पढ़ने का इच्छा हो रहा है उपदेशामृत ग्रंथ, भला भली भांति अच्छा तरह पाठ करने का इच्छा हो रहा है. ये ग्रंथ सबको मिला है आपको, आप आज पढ़े हैं सब, बहुत अच्छा, पढ़ते रहेंगे हर रोज. और इस ग्रंथ में जो निर्देश प्रभुपाद दिए हैं, देखिए प्रभुपाद इसका बहुत गहरा रूप से इसका विश्लेषण किए हैं हर श्लोक का. यद्यपि 11 श्लोक हैं, पर इस ग्रंथ का परिधि है 91 पेज हैं, मतलब एक श्लोक का 8 पेज में एक एक श्लोक का विश्लेषण किया है प्रभुपाद. तो देखिए प्रभुपाद जी ने कितना गंभीर और गंभीर रूप से इसको विश्लेषण किया है. तो इसका फायदा उठाने के लिए क्या करना होगा, बहुत सीरियसली इसको पाठ करना चाहिए. उससे क्या फायदा होगा, पाठ करने से फायदा क्या होगा, भक्ति लाभ होगा. आप लोग भक्ति चाहते हैं तो भक्ति प्राप्ति के लिए क्या करना होगा, इसको भली भांति पाठ करना होगा. और जब पाठ कर रहे हैं उससे फायदा हो रहा है, आप लोग जो पढ़ रहे हैं उससे फायदा हो रहा है. अच्छा, तो अब हम चौथा श्लोक का विचार करेंगे, फोर्थ वर्स. इस श्लोक में, चौथा श्लोक में विश्लेषण हुआ है भक्तों के साथ हमारा आचरण कैसा होना चाहिए. सो शुड आई स्पीक इन इंग्लिश नाउ, हिंदी? ओके, इफ आई स्पीक इन हिंदी हाउ मेनी ऑफ यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड? ओके, if I say it in Hindi, Archana and Krishna Virja, Hindi में होने से आप समझेंगे नहीं, समझेंगे? अच्छा, मैं पूछा कौन समझेंगे नहीं, और मेरा हिंदी समझ रहे हैं, पहली बात तो ये है। अच्छा, मेरा मुश्किल ये होता है कि हिंदी में मैं अपना एक्सप्रेशन उतना अच्छा नहीं कर सकता हूं, चर्चा नहीं है ना। और ये देखिए, हमारा एक रूप एक विचार तो ये है कि अंग्रेजी सीखने से अच्छा हुआ कि मैं हर जगह जाके भगवान की वाणी प्रचार कर सकता, पर हिंदी का चर्चा नहीं होने से आपके साथ हम ठीक से ये नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं हिंदी में कोशिश कर रहा हूं, पहले अंग्रेजी में ही बोल लेते हैं, तो इंग्लिश में बोलने से फायदा ये होता है कि मेरा जो चिंतन है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाता है, और उसके बाद हिंदी में बोलने से थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि चिंतन अंग्रेजी में आसानी से होता है और उसके बाद हिंदी में एक्सप्रेशन करने में सुविधा होती है। सो नाउ विल डिस्कस द फोर्थ वर्स, फर्स्ट इन इंग्लिश एंड देन आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन हिंदी। द फोर्थ वर्स इज डिस्क्राइबिंग हाउ टू एसोसिएट विद द डिवोटीज। इज इट इम्पोर्टेंट इफ वी वॉन्ट टू बिकम अ डिवोटी, इज इट इम्पोर्टेंट दैट वी एसोसिएट विद डिवोटीज प्रॉपरली? Isn't it? So association is very important. So how do we associate with devotees? Dadati pratigrinhati guiham akhati prichyati bhungte bhojayate chaiva sadvidha priti lakshanam. Priti ka lakshan. हम किसी के प्रति हमारा प्रीति है, किसी के प्रति हमारा प्यार है, वो हम कैसे उसको हम दिखाते हैं, आप बताइए। जब जिसके प्रति हमारा प्यार है होगा, हम उसके प्रति क्या करते हैं, उसको कुछ देते हैं, है ना? हमारा हम जो उनको जो उनके प्रति जो हमारा मनोभाव कैसा है वो प्रकाश करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत अच्छे कुछ उपहार देते हैं, भेंट देते हैं, ददाति और प्रतिगृहणाति। उन्होंने जब कुछ देते हैं बहुत आग्रह के साथ, उसको हम ग्रहण करते हैं। व्हेन वी एक्सप्रेस आवर लव फॉर समबॉडी, हाउ डू यू डू दैट? वी ऑफर समथिंग टू दैट पर्सन। Young boy falls in love with a young girl. What does he do? He buys nice bouquet of flowers and gives it to her. Or he gives some nice sari or some nice ornament. Dadati. Aur pratigrinhati. Wo jab kuch dete hain, ho sakta hai thoda mamuli cheez hai. उसका बहुत ही फालतू, उसका कोई जरूरत भी मेरा नहीं है, पर चूंकि उन्होंने हमको दिए हैं इसलिए हम उसको बहुत आदर के साथ ग्रहण करता है ना? जैसे बच्चा, पिताजी ने बच्चा को कुछ पैसा दिया और बच्चा वो पैसा लेकर कुछ मिठाई खरीदा, मिठाई खरीद के पिताजी के पास लाया, डैडी ये आपके लिए, आप ये लीजिए। तो पिता का मनोभाव कैसा होता है? पिता का जब भी ये है, डायबिटीज है, मिठाई खा नहीं सकते हैं, फिर भी वो क्या, उसका मन आनंद से भर जाता है, वो बच्चे को अपना गले लगा लेते हैं, है ना? क्योंकि बच्चा ने उसका जो प्यार जो प्रदर्शन किए हैं इसके माध्यम, इससे पिता का प्रसन्नता होता है। सो दिस इज हाउ वी हैव वी एक्सप्रेस आवर लविंग एक्सचेंज। ददाति प्रतिगृह्णाति, गुह्यम आख्याति, पूछते हैं। जो गोपन मनोभाव जो है उसको प्रकाश करके पूछते हैं। और गुह्यम आख्याति अपना मन, मन जो जो सीक्रेट है उसको बताते हैं, है ना। जो हमारे नजदीक हैं उसके पास हम अपना जो सीक्रेट, जो गोपन जो ये हैं, सो उसको प्रकाश कर देते हैं, है ना। गुह्यम आख्याति, और उनसे पूछते हैं, पृच्छति, आप क्या करना चाहिए। और भूंगते, खिलाते हैं, और भोजयते चैव, उनको खिलाते हैं और उन्होंने जब कुछ देते हैं तो खाते हैं, है ना। जब हम जैसे देखिए किसी कोई when some intimate person, when a someone very close to you comes to your house, what do? You immediately go to the market and buy the nice things and cook nicely and feed him. ऐसा होता है ना, घर में जब मेहमान आता है जो नजदीक है, बहुत प्यारे हैं, जब आता है तो क्या करते हैं, बहुत अच्छा से खाना पका के उसको खिलाते हैं। और वो जब कुछ लाता है तो वो भी आप खाते हैं। तो ये जो छह, ये प्रीति का लक्षण है, सर्वविध प्रीति लक्षणम। तो हम एक दूसरे के साथ कैसे आचरण करेंगे, भक्तों के बीच कैसा आचरण होना चाहिए, ये छह व्यापार के माध्यम होना चाहिए, है ना। ना क्या उससे केवल लेंगे और कुछ नहीं देंगे, ऐसा अगर हुआ तो क्या होगा, वो संपर्क नहीं बनेगा। कभी कभी होता है जो ऊंचे पोजीशन में होते हैं उसको वो चाहता है कि सब उसको देते रहेंगे, लोग देते भी हैं उनको, और वो सोचता है कि मेरा काम है केवल लेना, वापस देने का कोई, तो इससे क्या होगा, संपर्क नहीं बनेगा। परंतु जब ऐसे लेन देन होता है, लेना और देना, हम लेते हैं और देते हैं, इससे संपर्क बनता है। तो भक्तों के बीच ये आदान प्रदान या लेन देन का चर्चा होना चाहिए। ददाति प्रतिगृह्णाति, गुह्यम आख्याति पृच्छति। हमारा जो गोपन मन में जो है उसको प्रकाश करना, किसके पास हम करते हैं, जो हमारा नजदीक है, अपना जो सीक्रेट्स हैं वो तो हम शत्रु के पास नहीं बोलते हैं, अपने मित्र के पास बोलते हैं, जो मेरा नजदीक है उनके पास बोलते हैं। गुह्यम आख्याति और पृच्छति, पूछते हैं, किससे पूछते हैं, क्या करना चाहिए, जिसके प्रति हमारा विश्वास है, भरोसा है। और भूमते भोजयते चैव, उसको खिलाते हैं। हम तो बोलते हैं जब कोई भक्तों के बीच जब झगड़ा होता है, मनो ये होता है, तो मैं बोलता है तुम एक दूसरे को खाना खिलाओ, घर में बुलाओ और बहुत अच्छा से खाना पका के, और उसके खाना खाने के बाद तुम बैठ के विचार करो क्या गलती क्या हुआ था। तो ऐसे बहुत आसानी से उनका जो विरोध था वो उसका वो समस्या का समाधान हो जाता है। तो ये सीक्रेट मिल गए हैं ना। अगर किसी को साथ आपका संपर्क थोड़ा सा जटिल हो गया था तो क्या करना, उनको घर में बुलाना, अच्छा से खाना खिलाना, और खाना खिलाने के बाद उनके साथ बैठ के बातें करना। तो सारे समस्या का समाधान हो जाएगा, सारे मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएगा। और इस कारण प्रभुपाद जी ने हमारे इस्कॉन में क्या किए हैं, प्रभुपाद जी ने निर्देश दिए हैं बहुत अच्छा से प्रसाद बांटना। प्रभुपाद बोलते थे कि जो भी हमारा मंदिर में आएंगे उसको प्रसाद मिलना चाहिए। बहुत ज्यादा अगर नहीं दिया, थोड़ा बहुत थोड़ा प्रसाद सबको मिलना चाहिए। तो वैसे और ये प्रसाद बांटने के लिए प्रभुपाद जी ने संडे फीस्ट का आयोजन किए थे। और संडे फीस्ट का नाम दिए थे प्रभुपाद लव फीस्ट, मतलब प्रीति भोज। ये प्रीति लक्षणम है ना, षडविध प्रीति लक्षणम, और यह है प्रीति भोज लव फीस्ट, प्यार के संपर्क स्थापन करने के लिए यह फीस्ट का आयोजन। और हम क्या होता है, आप लोग तो बोलते हैं महाराज आइए हमारा घर, भक्त लोग का बुलाते हैं और बुला के क्या करते हैं, बहुत अच्छा से खिलाते हैं, और खिलाने से क्या होता है, संपर्क बनता है, बन रहा है ना। आप आए आकर हमारा मंदिर में प्रसाद लीजिए और हम भी आपका घर में जाकर प्रसाद लेंगे, ऐसे खाना नहीं खाएंगे। तो घर में क्या करना चाहिए, सही ढंग से खाना पकाना चाहिए, भोग बनाना चाहिए, उसको भगवान को अर्पण करना चाहिए, तब भक्तों को खिलाना चाहिए, है ना। तो भक्तों के खिलाने के लिए क्या करना चाहिए, घर में सारे मांस मछली का विदा करना चाहिए, प्याज लहसुन को भी निकालना चाहिए, और क्योंकि ये सारे चीज भगवान नहीं ग्रहण करते हैं। देखिए प्याज लहसुन मांस से भी खराब है। कोई बोलता है महाराज प्याज लहसुन भी तो वेजिटेरियन है, प्याज लहसुन तो वेजिटेबल्स है। देखिए हमारा मतलब वेजिटेबल केवल ऐसा नहीं कि जो वेजिटेबल है वो खाना पड़ेगा, जैसे कुछ पेड़ पौधे हैं और या फल हैं जो जहर है, जहरीला है ना, तो वो जो फल जहरीला है, जो पौधे जहरीला है, तो वेजिटेरियन होने के कारण क्या हमको उसको खाना पड़ता है, खाते हैं, क्यों नहीं खाते हैं, क्योंकि वो खाना खाने का लायक नहीं है। वैसे भी प्याज लहसुन भी मनुष्य का आहार का ये नहीं है। कोई बोलता है लहसुन का बहुत मेडिसिनल इफेक्ट है, जहर का भी बहुत मेडिसिनल इफेक्ट होता है, मेडिसिन जहर से मेडिसिन बनता है, तो मेडिसिन के रूप में ले सकते हैं पर खाने के लिए नहीं, और विशेष रूप से भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए। आप क्या भगवान को जहर पिलाएंगे? तो भूंगते भोजे थे कैसे होना चाहिए पता है आप सब, घर में भगवान को मंदिर बना के भगवान को भोग लगा के जिसके साथ आप प्यार के संपर्क स्थापन करना चाहते हैं उस भक्तों को घर में बुलाना। और जब हमारे मंदिर में आएंगे तब मंदिर में भगवान को प्रसाद लेना। प्रभुपाद ये निर्देश दिए हैं जो मैं बोल रहा था, जो भी मंदिर में आएंगे गंगा नारायण मेक श्योर whoever comes to the temple get some prasad, मंदिर में भगवान को प्रसाद। वो लोग कर रहे हैं, सुबह को मंदिर को दर्शन करने के लिए आते हैं, मंगल आरती में आते हैं, प्रसाद मिलता है, सुबह का जो बाल भोग जो लगता है वो बाल भोग दिया जाता है। अच्छा दर्शन आरती के समय चरणामृत मिलता है और थोड़ा फल प्रसाद भी मिलता है, ऐसे इससे अच्छा होता है और इससे प्रीति का संपर्क बन रहा है। ये षड्विध प्रीति लक्षणम्। अच्छा, आज मैं ये एक श्लोक ही करते हैं। कोई प्रश्न है किसी को तो पूछ सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। रेश, तुम्हारा नाम? नमिता। ओके, मैम तुम आते नहीं हो, तुम्हारा नाम इसलिए मैं भूल गया था। हाँ, सो नाउ यू आर कमिंग एवरी डे, यू विल बी कमिंग एवरी डे। वेरी गुड, वी आर वेरी हैप्पी टू हियर दैट। थैंक यू नमिता। ओके ओके, वेरी गुड। देखो, या मैं हिंदी में बताऊँ या अंग्रेजी में? हिंदी में ही। अच्छा, मेटीरियल और स्पिरिचुअल में अंतर बहुत कम है। मेटीरियल और स्पिरिचुअल में अंतर केवल ये है, जो हम अपने लिए करते हैं, अपने इंद्रिय भोग के लिए करते हैं, वो है मेटीरियल, और जो भगवान के लिए करते हैं वो है स्पिरिचुअल। अंतर केवल ये है। तो मेटीरियल और स्पिरिचुअल में जो फर्क है, अंतर जो है बहुत वेरी थिन। तो जैसा सोचो, खाना चाहिए, हर व्यक्ति को खाना पड़ता है। तो जब हम खुद पका के खाना खाते हैं, अपने लिए जब पकाते हैं खाते हैं, वो मेटीरियल एक्टिविटी हो गया। और जब हम वो खाना ही पका के भगवान को निवेदन करते हैं और उसके पश्चात उसको ग्रहण करते हैं, तो स्पिरिचुअल हो गया। हर काम ऐसे अगर भगवान के लिए किया जाता है तो स्पिरिचुअल बन जाता है। यद्यपि ये मेटीरियल प्लेटफॉर्म में उसका संपादन हो रहा है, पर चूंकि ये भगवान के लिए हो रहा है तो स्पिरिचुअल बन जाता है। है ना? हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी को? ओके, यस, what people think is not so important. What is real, that is what is important. People may think a crook to be a saint, but does it make him a saint? So people's thinking is not important. What really matters is how Krishna thinks, how Krishna sees. And that is the foundation of devotion. How Krishna is seeing me, not how the world is seeing me, how the world is accepting me, how the world is worshipping me, that's not important. How Krishna is seeing me, that's what really matters. And then ultimate thing is the result. Somebody may perform the so-called yoga for, as I mentioned, Vishwamitra, for thousands of years who performed austerity, but all 64,000 years of endeavor is washed away. Right? Whereas a devotee, he is singing and chanting and dancing, eating Krishna, you know, eating feasts every day, three times a day. But his heart is getting purified. Ultimately, that's the consideration, the state of our consciousness, the state of our heart. If the heart is purified, the success is achieved. If the heart is not purified, then everything is lost. Hare Krishna, all glories to Srila Prabhupada, Gaur Premanande, Hare Hare.